वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम। और फिर दोहराई गई बात, दोबारा दोहराने की क्या जरूरत है। बात को दोहराया उस वक्त जाता है जब उसकी ताकीद करनी मकसूद होती है, ताकीद करनी होती है, एम्फसाइज करना होता है उस बात को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते थे तो कभी कभी किसी दुआ को तीन तीन मर्तबा करते थे। कोई बात अहम होती थी तो तीन दफा कहते थे। यहां पे ये अहम बात है, उसको फिर बताया गया कि लोगों तुम अपने लिए ये ना समझना इसको कोई मुसीबत, ये तुम्हारे लिए कोई मसले की नहीं। अल्लाह ने ऐसे अहकाम नहीं दे दिए जो बड़े सख्त हैं, ये तो बड़े रिजिड हैं, ये तो बड़े ऐसे हैं, नहीं, ये इसलिए है ताकि वो मेहरबान हो तुम पे, बुरा ना मानना इसको। ये हकूक के मामलात हैं और अल्लाह को पता है कि उसने ही मर्द को भी पैदा किया, उसने औरत को भी पैदा किया, उसको पता है किसको कितने हक देने हैं, कितने किसके ऊपर फराइज रखने। वह युरीदुल्लदीन यत्तबीउन शहवाती अन तमीलू मैलन अज़ीमा। ये बात है जो मैं कह रही थी आपको कि चाहते हैं वो लोग जो पैरवी करते हैं शहवात की, अन तमीलू मैलन अज़ीमा, कि तुम मायल हो जाओ, बड़ा मायल हो जाना, कि तुम अपनी ख्वाहिशात के पीछे तुम भी चलने लगो। जो एक रास्ता है अल्लाह का, अल्लाह चाहता है तुम पे मेहरबान हो जाए। एक और रास्ता भी है, वो किनका रास्ता है? वो उन लोगों का रास्ता है कि जो ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। ख्वाहिशात के पीछे चलना क्या होता है? बस मेरी मर्जी, ये मुझे ये समझ आती है, मुझे तो नहीं ये लगता ये सही है, मैं इसमें कोई लॉजिक ही नहीं, मुझे तो समझ आती, और मैं तो समझती हूँ ऐसा होना चाहिए। ये है ख्वाहिशात का बंदा, जो अपनी सोच है, जो अपनी समझ है, मैं बड़ी अक्लमंद हूं, मुझे सारा पता है, या मेरी मर्जी ये है और होना ऐसे चाहिए क्योंकि मेरा दिल ऐसे चाहता है या मेरा दिमाग ऐसे कहता है। ये है ख्वाहिशात का बंदा, ये एक तरफ ख्वाहिशात का बंदा। ख्वाहिश के बंदे को कहाँ दिल करेगा कि आप शरीयत पे चलें? ख्वाहिशात के बंदे को कहाँ ये वो होगा कि आप ये अल्लाह के अहकामात माने? उसको तो ये लगता है ये सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस है, उसको तो ये लगता है ये क्या, ये औरत को आधा, आदमी को दो हिस्से और औरत को एक हिस्सा, ये क्या बात है? आदमी चार चार शादियां करे, औरत एक ही शादी करे। बस औरतें इतनी, बिल्कुल ही मैं क्या कहूं कि उनकी अकल को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो इस पे भी एतराज करती हैं कि इनको चार शादियों की, हमें क्यों नहीं चार शादियों की इजाजत? ये कितनी बड़ी बेवकूफी है कि कोई औरत ये सोचे। तो ये जो ख्वाहिशात के बंदे हैं ना, और नहीं उसको वली की रजामंदी क्यों चाहिए, उसको ऐसे क्यों चाहिए, यानी हर चीज के ऊपर एतराजात उनको। बस इन बातों को आप बताएंगे ना अगर, तो उनको बहुत सारे इसके अंदर मसले नजर आएंगे। क्यों? इसलिए कि वो अलीम और हकीम को नहीं समझते ना, उसके ऊपर उनको ट्रस्ट है, उनको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का दिल है बस। जैसे आज आप माशरे के माशरे देखें, नीचे भरे में ख्वाहिशात परस्त लोगों से, वॉट दे ओनली वॉन्ट, बस जो वॉट आई डिजायर, वट आई वॉन्ट, वट आई थिंक, बस उसी के गिर्द उन्होंने सारा, चाहे वो विरासत है, चाहे वो शादी है, चाहे वो कोई भी है, छुपी दोस्तियां हैं, नई दोस्तियां हैं, मेहर देने हैं या जहेज देने हैं, हमें हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। अगर कोई नमाज रोजा करके भी यही बातें करता है तो वो भी ख्वाहिश का बंदा ही है और कुछ नहीं है। तो एक अल्लाह चाहता है और एक ख्वाहिश के बंदे चाहते हैं। अल्लाह तो चाहता है कि वो तुम पे मेहरबान हो जाए जब भी उसने ये सारे अहकाम तुम्हें दिए, वरना इंसान खुद नहीं समझ सकता किसको कितना हिस्सा देना है, किसके साथ कैसे करना है, किस में हमारी सेफ्टी है, किस में हमारी भलाई है। आप देख लें इंसानों बेचारों का तो ये हाल है, इनकी अकल इतनी कम है कि बेचारे रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद फिर उनको कोई चीज़ फाइंड करते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद कहते हैं नहीं वो जो रिसर्च थी ना वो गलत निकल आई, अब एक और रिसर्च आई है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक है, फिर कुछ अरसे बाद कहते हैं नहीं नहीं वो भी नहीं ठीक है, फिर कोई और चीज़ आपको कह देते हैं। तो ये तो कैसे बताते हैं आपको कि माशरे के अंदर अमन सुकून, उसके अंदर हारमनी, उसके अंदर सबके हकूक जहां अदा हो रहे हो, वो पुरसकून माशरा कैसे कायम हो सकता है? ये कैसे आपको बता सकते थे? इन्होंने तो एक दिन कहना था ऐसे कर लो, दूसरे दिन इन्होंने कहना था नहीं नहीं ये वाली फाइंडिंग हमारी रॉन्ग हो गई, इससे ये मसले पैदा होते, ये कर लो अब, फिर तीसरे दिन उन्होंने कुछ और कहना था। लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें जो अहकाम दिए ये कयामत तक के लिए हैं, और इन्हीं में फलाह है तुम्हारी, लोगों समझ लो। मगर चूंकि हमारे पास ना ऐसा कोई मॉडल है ना हम ऐसे कोई देखते हैं, तो हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं है इन चीजों का कि जब ऐसा माशरा होगा जिसमें इन सारी चीजों को फॉलो किया जाए तो वो कैसा पुरसकून होगा। जो कुरान के मुताबिक चलने वाला होगा उसमें उसमें कितनी हर एक के ऊपर इत्मीनान होगा, उसमें लोग कैसे प्यारे लोग होंगे, वो हमने कभी देखा नहीं ना दुनिया में, कहीं आजकल ऐसा है ही नहीं। जो इसको मानने वाले हैं वही इसके ऊपर चलने को तैयार नहीं है, वो भी अपने तरीके बनाने को तैयार है। हमारी ख्वाहिश ये है, और आजकल तो हमारी ख्वाहिशात वही हैं जो कि मादर पितर आजाद जो माशरे हैं उनकी हैं, कि हमें भी उस तरह चाहिए, मर्जियां करो अपनी, अल्लाह की मर्जी से नहीं हमने चलना, हमने अपनी मर्जी से चलना। तो वो जब अपनी मर्जियां करेंगे तो उसके बाद एंड अप किधर होंगे, डिजास्टर जो आज आप देख रहे हैं, सिर्फ डिजास्टर है, हलाकत बर्बादी बेचैनी बेसकूनी। तो जब ख्वाहिशात के बंदे बनते हैं ना तो ये हाल होता है। तो चाहते हैं वो लोग जो पैरवी करते हैं ख्वाहिशात की कि तुम झुक जाओ, बड़े झुक जाना, यानी तुम भी जिस तरह से वो चल रहे हैं तुम भी उसी तरह चलो, तुम भी इस रास्ते से हट जाओ। इसीलिए वो फिर डाउट्स भी डालते हैं ना, ये तुम क्या, ये तो ये क्या बातें हुई, बोला ये तुम कैसे कह सकती हो। फिर वो आपको भी इस रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे जो ख्वाहिशात के बंदे हैं, वो आपको भी चलने नहीं देंगे। ये आप नोट करते ही होंगे, कहीं हमारे खानदानों के अंदर ख्वाहिशात के बंदे होते हैं, वो फिर इस तरह सीधे रास्ते को हमारे लिए इतना मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं, या उसमें इतने शकुको शुभार डालते हैं, या ऐसे उसमें टेढ़ टेढ़पन निकालते हैं कि इंसान कहता है हाँ वाकई पता नहीं ये तो ठीक है, वो भी फिर उस तरफ ही चल पड़ता। तो वो तो चाहेंगे, अल्लाह ने वॉर्न कर दिया है कि ख्वाहिशात के बंदे तुम्हें इस रास्ते पे नहीं चलने देंगे, जो रास्ता अल्लाह चाहता है कि तुम इस पे चलो। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अनकुम, अल्लाह तो चाहता है कि तुमसे तखफीफ कर दे, हल्का कर दे। पहले के अहकामात मुश्किल होते थे, अल्लाह ने तो इस उम्मत के लिए आसान अहकामात दिए, पूरी जमीन को इनके लिए बना दी, कहीं पे भी आप नमाज पढ़े, आप खड़े होके नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ लें, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लें, इशारों से पढ़ लें, आपको कहा रोजा अगर नहीं आप रख सकते तो बाद में कोई बीमारी या कोई ऐसा सफर है तो बाद में रोजा रख लें, कोई ऐसी तकलीफ आपको हो गई है नहीं उस वक्त आपकी सेहत इजाजत देती बाद में उसको पूरा कर लें। अल्लाह ताला ने अहकामात में देखें यूसर किया है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल यूसर वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, सूरह बकरा में हमने पढ़ा था ना, ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं चाहता, मगर डू यू इवन बिलीव दिस, ये इसके ऊपर यकीन है आपको इस बात पे कि अल्लाह आसानी चाहता है मुश्किल नहीं चाहता, या लगता है कि मुश्किल है, आए बड़ा मुश्किल, आए दीन बड़ा मुश्किल है, इन बातों पे कैसे अमल होता है, बड़ी मुश्किल। अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे लिए मैं आसानी चाहता हूँ, अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे लिए मेहरबान होना चाहता हूँ, आप कहते हैं मुसीबत मुसीबत। कहीं तो मसला है ना, फिर तो बात अल्लाह की गलत नहीं हो सकती, हमारी ही गलत है। तो अल्लाह ने आसानी है कि पहली उम्मतों के ऊपर देखें 50 नमाजें दो थी, और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था ना मेराज पे, कि जब 50 नमाजें हो गई थी फरमाया था कि आपकी उम्मत ये भी नहीं पढ़ सकेगी, मेरी उम्मत के ऊपर इससे कम थी नमाजें लेकिन वो भी नहीं पूरी कर सकी, तो 50 से कम कम कर करके अल्लाह ने 5 कर दी, और फरमाया 5 का अजर 50 के बराबर होगा, 5 का अजर रख दिया कि ये 5 पढ़ोगे ना 50 के बराबर तुम्हें अजर मिलेगा, इतना बड़ा रख दिया। इसी तरह उन उम्मतों के अंदर औरतों के लिए हैज की हालत में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी, इस उम्मत में वो सारी उठा दी गई, कोई मुश्किलात वो वाली नहीं है हाइजा औरत के लिए जो पिछली उम्मतों के अंदर थी। पिछली उम्मतों में आपने देखा होगा सूरह बकरा के अंदर कि जब उन्होंने बछड़े की पूजा की थी तो उसके बाद कहा गया एक दूसरे को कत्ल करो, इस उम्मत में कहा गया तुम सिर्फ तौबा कर लो। बहुत सारी चीजें जो आसानियां दी गई, आसानियां उन्होंने सिर्फ अपनी जहां पे उनके जो उनकी स्पेशल जगह होती थी सिर्फ वहां पे वो लोग इबादत कर सकते थे, हमारे लिए पूरी जमीन पे कहीं पे भी कर ले, माले गनीमत उनके लिए हराम था, इस उम्मत के लिए जायज कर दिया गया। बहुत सारी चीजें इस तरह अहकामात में हैं जो उनके लिए मुश्किल थे वो अहकामात, लेकिन इस उम्मत के लिए आसानियां की गई। वखुलिकल इंसानु दाइफा, और इंसान को अल्लाह ने कमजोर पैदा किया है। अल्लाह यानी उसकी कमजोरियों को जानता है कि तुमसे गलतियां भी होती हैं, तुम फिसल भी जाते हो, तुम कमजोर हो, तो अल्लाह ने उसके मुताबिक तुम्हारे लिए अहकाम दिए। मर्द की अपनी तरह की कमजोरियां होती हैं, औरत की अपनी तरह की कमजोरियां होती हैं। बाज दफा इंसान कुछ करना चाहता है मगर भूल जाता है, बाज दफा कोई चीज नहीं करना चाहता और कर बैठता है, कमजोर है। तो अल्लाह ताला ने उसकी रायत की है कि इंसान कमजोर है, अल्लाह जानता है वो कमजोर है और उससे गलतियां होंगी, अल्लाह ये जानता है, लेकिन अल्लाह ताला रायत करता है तुम्हारी इसकी। इसीलिए अल्लाह तौबा के दरवाजे खुले रखता है इंसान के लिए कि वो पलट आए अल्लाह की तरफ। तरह आप देखें, एक और चीज का मुझे याद आया कि वुजू नहीं कर सकते तो तयम्मुम कर लो, ये भी कितनी आसानी की गई इस उम्मत के लिए। कुर्बानी को आप खुद भी खा सकते हैं, कुर्बानी करके उसका गोश्त खुद भी खा सकते हैं, पहले उम्मतों में ये नहीं था। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को भी भेजते थे किसी मुहिम पे, तो उनको ताकीद करके भेजते थे कि लोगों को जो बातें बताना तो आसानी की बताना, उनके लिए आसानी करना। या अय्युहल्लदीना आमनू, ए ईमान वालों। अब ये ईमान वालों को एक अहम बात की तरफ हुक्म दिया जा रहा है। क्या ला तकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, मत खाओ आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से, यानी एक दूसरे के मालों को बातिल तरीका। बातिल तरीका कौन सा होता है? जो हक के उलट हो, और हक का तरीका वो है जो सारे तरीके जो शरीयत ने जायज किए हैं उनके उलट, उनके ऑपोजिट, यानी जो शरीयत ने मना किया जिन तरीकों से, वो सारे तरीके बातिल तरीके हैं। तो तुम एक दूसरे का माल ना खाओ बातिल तरीके से, इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तुरादिम मिनकुम, मगर ये कि आपस में रजामंदी से तिजारत तुमने की हो तो ठीक है, अदरवाइज किसी का भी माल छीन झपट के, चोरी करके, डाका डाल के, झूठ बोल के, धोखा दे के, सूद ले के, रिश्वत ले के, किसी तरह भी ऐसे खाना जो कि किसी फ्रॉड के जरिए, किसी ऐसी तरह से भी खाना जो शरीयत ने हराम की हो, वो बातिल में आ जाएगी, झूठी कसम खा के, नाप तोल में कमी बेशी करके, ये जो मिलावट करके, जखीरा अंदोजी करके, यानी आप मार्केट में इतनी शॉर्टेज कर देते हैं पैसे को या चीज को रोक लेते हैं अपने पास, इतनी शॉर्टेज कर देते हैं कि कीमतें बढ़ जाती हैं, फिर मार्केट में ले आते हैं, ब्लैक ब्लैक मार्केट करना, गसब करके किसी का माल, कि यानी कोई भी ऐसा तरीका जिसमें कि आप दूसरी की रजामंदी नहीं है और आपने उसका माल खा लिया। एक तो होता है ना तिजारत, तिजारत में बाहमी रजामंदी होती है, आपने किसी को पैसे दिए और उससे चीज ली, अब वो पैसे उसके लिए जायज हैं, वो खा सकता है वो पैसे, क्योंकि आप उसने आपके साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत एक तिजारत की है। लेकिन एक है पैसे जो किसी के पास गए, लेकिन या तो उसको ला इल्मी थी, उसको पता ही नहीं चला और उसके साथ धोखा हो गया, या झूठ बोल के था, या किसी और तरह से था, बेईमानी के साथ था, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। यानी अब वो पैसे हराम हो गए। एक पैसे हैं जो रजामंदी से, ऐसे नहीं है कि कभी किसी से पैसे ले ही नहीं सकते, ले सकते हैं पैसे, मगर उसके पैसे तभी उसके लिए जायज होंगे, हलाल होंगे, जिस वक्त वो तिजारत ऐसी होगी जो बाहमी रजामंदी से होगी, अदरवाइज वो बातिल है रास्ता। ये आयत भी इतना बड़ा एक डोर खोलती है इस बात की कि हम इस पे सोचें कि कौन कौन से बातिल तरीके हैं जो आज माशरों में राइज हैं और जिसकी वजह से इंसान अपने पेटों के अंदर हराम भर रहे हैं। पहले तो बात ये समझनी चाहिए कि जब हराम पेट में जाता है तो होता क्या है, क्या फर्क पड़ता है अगर हराम चला भी जाए। इंसान की दुआ, सबसे बड़ी तो बात है दुआ कबूल होनी बंद हो जाती है। एक वो हदीस है ना, आपने मशहूर हदीस सुनी होगी कि कोई इंसान हज पे जाता है, अल्लाह के घर गया, उठा उठा के हाथ दुआएं कर रहा है
और उसके ऊपर सफर के भी आसार हैं, उसके बाल भी प्रागंधा हैं, वो कैसे कितनी बुरी हालतों में कहाँ से कितनी यानी दूर से पहुंचा हुआ है, मुसाफिर है। तो मुसाफिर होने के नाते भी दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह के घर में भी दुआएं कबूल होती, लेकिन इसकी दुआ नहीं कबूल होती। क्यों? इसलिए कि इसकी कमाई हराम की थी, इसके पेट में हराम है, इसका गोश्त हराम पे पला हुआ। तो सबसे पहले तो ये कि दुआएं ही कबूल नहीं होती, और ये कितनी बड़ी बात है कि इंसान की दुआ कबूल होनी बंद हो जाए। तो इंसान तो फिर भाई यारो मददगार हो गया ना जिसकी दुआ ही कबूल नहीं होती। और ये हराम जो है, ये दुनिया के अंदर जिस नोयत का भी हराम होता है, सूद का थ्रू हराम खाया गया तो उसकी अलग सजा है, बेईमानी के थ्रू हराम खाया होगा उसकी अलग सजा है, फिर इसी तरह यतीम का माल खाया होगा उसकी अलग सजा है, फिर और उनकी सजाएं हैं जो आखरत के अंदर, वो तो आप देखते हैं, हमने पहले भी डिस्कस की कि किस किस तरह उनकी सजाएं। इसी तरह हदीस के मुताबिक कुत्ते की कमाई यानी कुत्ते के ने बच्चे दिए आप बेचने चले गए, बिल्ली की कमाई मुर्दार बेच के जो कमाई जाती है, यानी ये मुर्दार ही है ना, जब सही जिबा ना किया जाए तो वो मुर्दार है। शराब की कमाई, खिंजीर की कमाई, ये हराम है, यानी इनको बेचना खरीदना। अब चाहे बाहम रजामंदी से हो रहा है, एक बाहम रजामंदी है ना कि आप कहें हमने दिया पैसे और ले ली चीज, तो बाहम रजामंदी से हुआ। और सूद भी, वो भी राजी था, हम भी राजी हैं सूद देने को, वो सूद लेने को राजी है, तो बाहम रजामंदी से तो हुआ है ना। नहीं, कई चीजें इट सेल्फ वो हराम है, वो चाहे आप रजामंदी भी कर लें तो फिर भी वो हराम ही रहेंगी। जैसे एक जानिया की कमाई, वो जिना करने पे राजी, जिना करने वाला भी राजी, वो उसको पैसे देता है, वो काम करती है, तो अब मुझे बताएं क्या वो जायज हो गई? नहीं, क्योंकि वो इट सेल्फ चीज ही हराम है। एक होती है इट सेल्फ वो चीज का हराम होना, उसकी एक नौयत है और एक एक उसका सेल्फ है, एक तरीका है, तरीका हराम हो सकता है और एक वो चीज ही हराम हो सकती है। तरीका हराम कैसे हो सकता है कि एक आदमी दूध बेचता है, दूध बेचना कोई हराम कारोबार तो नहीं, लेकिन जो तरीका उसने अपनाया कि उसमें मिलावट कर दी, वो हराम हो गया। फिर इस तरह एक आदमी कहीं मजदूरी करता है, लेकिन वो जो आवर्स लगा रहा है उनके अंदर कमी कर रहा है और पैसे पूरे के ले रहा है, पैसे 8 घंटे के ले रहा है, लगा 2 घंटे रहा है, बाकी टाइम इधर उधर बातें कर रहा है। अब वो मजदूरी करना गलत नहीं है, लेकिन वो जो तरीका उसने अपनाया वो गलत था। काहिन की कमाई भी हराम है, जो ये फॉर्चून टेलिंग करते ना, आपने देखा होगा जगह जगह चौकिंग, वॉल चौकिंग की होती है जी, फलाना आमिल बाबा ये वो आपको ये बता देगा वो बता देगा। इसी तरह और भी पामिस्ट हैं, हाथ देख के बताते हैं ये को फलाना, पता नहीं किस किस तरह चीजों, आजकल आपको पता ही होगा टैरो कार्ड्स हैं तो क्या है, ये सारे जो कमाई के तरीके हैं ये हराम है। इसी तरह आजकल ये बहुत चीजें निकली हुई हैं जो कि बहुत तरह के धंधे निकले हुए जो लड़कियों से कराए जाते हैं, जिसके जो हराम के जुमरे में आते हैं, जो फहाशी हैं, उनको सेल किया जाता है उन लड़कियों को, यानी एडवर्टाइजमेंट में यूज करके, या इस तरह उनके चेहरों को, उनकी खूबसूरती को, उनके फिगर्स को फहाशी के लिए, ये फहाशी के जरिए कमाई की गई ना। तो इसी तरह खरीदो फरोख्त, जो जायज खरीदो फरोख्त भी है, उसमें भी मसलन आपने कोई कपड़ा खरीदा, उसमें भी जब तक बाय और मुश्तरी, खरीदार और जो बेचने वाला है, जब तक दोनों जुदा नहीं होते, उस वक्त तक वो कोई भी ट्रांजैक्शन कैंसिल कर सकते हैं, कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं, कोई, जब दोनों जुदा हो गए तो फिर आप इख्तियार नहीं है ना उसको वापस लेने का ना उसको वापस देने का, अनलेस के जैसे यहाँ पे होता है कि उन्होंने आपको पहले ही इजाजत दी है विद इन 30 डेज आप चीज ले आए, विद इन इतने डेज आप कर लें, फिर ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा है तो वो फिर वो भी एक हराम चीज है, कि वो भी तिजारत भी ठीक नहीं है। आप यहां पे तिजारत वो है जो आपस के अंदर रजामंदी से की जाए। तो ये एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है कि बातिल तरीका कौन सा है, हम उसको जाने तो सही, कहीं ये तो नहीं कि हम बातिल तरीकों से चीजें कमाते रहें और हमें पता ही ना हो, बातिल से लेते रहें। आजकल ये भी बहुत तरीका है कि लोग गवर्नमेंट के साथ झूठ बोलने को झूठ नहीं समझते और उनको धोखा देने को धोखा नहीं समझते, इंडिविजुअल्स को शायद समझ लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स को धोखा देना साल के तौर पे कोई कहता है कि झूठ बोल देता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं लो इनकम हूं, मेरी इनकम इतनी लो है मेरे पास कुछ, हालांकि वो अच्छा कमाता है, लेकिन गवर्नमेंट को कह के लो इनकम की कैटेगरी में चला जाता है, वो गवर्नमेंट से वो ग्रांट लेता रहता है या सोशल सिक्योरिटी लेता रहता है या और जो भी पैसे उसको मंथली आते रहते हैं, हालांकि वो लो इनकम लोगों के लिए थे, वो उन लोगों के लिए थे जो बेचारे बिल्कुल कोई नहीं, लेकिन हालांकि इसके पास तो बहुत कुछ है, ये तो कमाता भी है, या इसके पास तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन आजकल ये झूठ कितना ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट फाइल कर देते हैं, हालांकि अंडर हैंड कहीं और चुप करके काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये दिखाते हैं कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनसे अनएम्प्लॉयमेंट हासिल करते रहते हैं, उधर से भी पैसे लेते हैं, इधर से भी पैसे लेते हैं, तो जो भी झूठ से कमाई की गई हो वो तो हराम है ना, या नहीं है, जो धोखा दिया गया हो वो हराम है कि नहीं, गवर्नमेंट से लेना हराम है, हलाल है, कि गवर्नमेंट को धोखा दे देना हलाल है लेकिन लोगों को ना दो, ये कहां से पता चला आपको? फिर इसी तरह ये जो किसी की जरूरत से फायदा उठाना होता है, कोई चीज की शॉर्टेज कर देना मार्केट में, ये क्या चीज है फिर, उसके बाद फिर अपनी चीज ले आए, इसी तरह नाजायज दूसरे का माल अपने माल में मिला के खा लेना नाजायज है, आप लोग पता है, इसी तरह जमीन किसी की हथियाली में ना, आपको जैसे हर एक का अपना अपना सजा का बताया गया, मगर हराम की सजा जरूर मिलनी है, अब वो जो जमीन का हमने पढ़ा था, एक बालिश जमीन भी किसी की खा ली तो 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में होगा, सूद खाने वाला अल्लाह और रसूल से जंग ले रहा है, विरासत में गड़बड़ कर दी है, तो पिछली हमने आयतें क्या पढ़ी थी, 70 साल भी कोई हदीस में आया था कि वो नेकी करता रहता है, एंड में अपनी वसीयत में कर जाता है कुछ गड़बड़ तो फिर जहन्नमी हो जाता है, और आया तो आयात में क्या था, अल्लाह की हदूद को तोड़ने वाले के लिए क्या सजा थी, जहन्नुम में अकेला पड़ा रहेगा, ये इस्लाम ना बहुत सेंसिटिव है लोगों के हकूक के बारे में, इंसानों के जो हकूक है ना उसके बारे में बहुत सेंसिटिव है, आप सोचेंगे इतनी सी बात इसे क्या हो जाता है, आज बहुत सारे लोग जो नमाज रोजा भी कर रहे होते हैं लेकिन उसके बाद लोगों से पैसे पकड़ लिए, फलां प्लॉट है फलां जमीन है, और वहां पे कोई प्लॉट ना कोई जमीन कुछ भी नहीं होता, और वो हाजी साहब कहलाते हैं, तो मैंने आपको बताया था किसी की रजामंदी के बगैर उसका माल नहीं ले सकते, वो भी एक बताया था चुपके से किसी की चीज उठा लेना, उसको चोरी नहीं समझते हम, चुपके से बस उठा ली, चुप करके बदल दी कोई चीज, एक चीज पड़ी हुई थी उसकी जगह दूसरी रख दी, खामोशी से उसको क्या पता चलेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना किसी को नुकसान दो ना नुकसान उठाओ, ना नुकसान दो किसी को ना नुकसान उठाओ, यानी दूसरे को ये समझो कि अगर मैं इसकी जगह पे होती तो मुझे क्या अच्छा लगता, क्या मेरे साथ ऐसा किया जाता तो अच्छा लगता मुझे, लेकिन हम ना सबका बताते हैं फलां ऐसे करता है फलां ऐसे करता है, देखो आजकल कोई हाल रह गया है, बेईमानी इतनी है, फ्रॉड इतना है, और फिर वाकई हम फिर ट्रस्ट भी नहीं करते किसी के ऊपर, लेकिन जब हम उसी जगह पे खड़े होते तो हम भी वही कर रहे हैं, हम भी कहते हैं रिश्वत दे के छुड़ा लो जान, क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं, और ये सब बातें हैं कि जो बहुत सोचने की हैं, कि अगर हराम माल से जो, अच्छा अभी आगे भी जो औलाद हराम माल से जो जिनकी ब्रॉट अप होगी वो फिर आगे क्या निकलेंगे, खुद सोचें कि उनके हालात क्या होंगे, फिर इसी चीजों से हमें पता चलता है कि ये फील्ड वो है जिसमें बहुत एहतियात की जरूरत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कसम खा के किसी मुसलमान शख्स का हक मारा अल्लाह ताला इस आदमी पर दोजख वाजिब कर देगा और इस पर जन्नत हराम कर देगा, कसम खा के, नहीं कहते कसम से, ये तो इतनी सी चीज है, आपने चीज अपनी बताई कि कसम खुदा की बिल्कुल ठीक चलती है ये गाड़ी, ये फ्रिज बिल्कुल सही चलता है, आप कह दें कि भाई ठीक है हाँ पुरानी गाड़ी है इसमें काम भी आते रहते हैं, लेकिन आप जरूर देख लें, आप खुद भी देख लें, मगर ये नहीं कह सकते कि आप उसके बिल्कुल ऐब छुपा दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा था बाजार में, वो उसने अनाज में हाथ डाला तो अंदर से गीला था, ऊपर ऊपर खुश्क रखा हुआ था, उसने कहा बारिश हो गई थी तो इसलिए ऐसे हो गया, तो तो छुपा के नहीं, जैसे होता है कि चीज को एक के साथ दूसरे के साथ रख देते हैं, तो फिर जब देते हैं तो ऊपर से खुश लोगों ने तो कुछ देख के लिया, लेकिन अंदर से वो निकाल के दे दिया। ये यानी ये बातें लगती हैं कि बहुत छोटी सी हैं, कोई बात नहीं है, अगर चार सेब अच्छे डाले तो दो गले सड़े भी डाल दिए। जो नापने का आला है, चाहे आज तराजू तो नहीं है, स्केल्स हैं, उनमें उनको ऐसा गड़बड़ करके रख दिया कि वो जरा पीछे है, जरा थोड़ा सा ऐसा ही दिखाता है कि बहुत ज्यादा ज्यादा वेट दिखाता है जो चीज भी रखे। तो कम तोला, उसको कम दिया, पैसे तो पूरे ले लिए। वैलुन लिल मुतफ़िफ़ीन, क्या है ये? 30वां पारा पढ़ते हैं, उसको याद भी किया होगा आपने। मुतफ़िफ़ीन कौन होते हैं? जो छोटी छोटी डंडी मारते हैं, बड़ी बड़े फ्रॉड नहीं करते, उन्होंने लाखों करोड़ों नहीं खाए होते, छोटे छोटे करते हैं, उसके लिए भी वैल है, तो फिर दूध बड़े वाले क्या है? आज हाल हमारा ये है कि जो जितना अमीर और असरो रसूख रखने वाला ना, वो उतने ही बड़े लुक में खाता है, वो उतने ही, उसके फ्रॉड करोड़ों और अरबों के होते हैं, जो छोटा है उसके छोटे हैं। तो जब हम कहते हैं ना, हाँ सारे ऐसे हो गए वहां पे, इस तरह है वहां पे, तो हर वक्त बेईमानी और ये है और रिश्वत है, और जब हम जाते हैं तो फिर हम भी वही करते हैं, कोई काम नहीं है, और जब हमें मौका मिलता तो हम उसी उसी चीजों को कर रहे होते हैं, जहां हमें मौका नहीं मिला। बस जिसको मौका नहीं मिला वही शरीफ है, वही ईमानदार है, जिसको मौका मिल जाता है वो बेईमान है। गाड़ियां बेचने लगते तो उसकी सुइयां पीछे कर देते कि माइलेज ही बहुत कम है। अब माइलेज कम है तो ज़्यादा ज्यादा पैसे मिलेंगे, हालांकि वो गाड़ी 1 लाख चली होती है, आपने दिखाया 50,000 चली गई, दूसरा तो समझेगा ना नहीं है, वो तो उसके मुताबिक कीमत देगा। लेकिन ये चीजें हम रूटीन की समझते हैं, हम कहते हैं नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कसम खा के किसी का हक मारा, अल्लाह ताला ने उसके लिए दोजक को हराम कर दिए, दोजक को वाजिब कर दिए, जन्नत को हराम कर दिए। एक आदमी ने कहा, या रसूलल्लाह चाहे थोड़ी सी चीज हो, आपने फरमाया हाँ, चाहे वो पीलू के दरख्त की एक शाख ही क्यों ना हो, एक शाख क्यों ना हो, यानी एक टहनी बस, इतनी सी छोटी चीज भी क्यों ना हो। तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये फरमाया कि ये उसके ऊपर जन्नत हराम है। अल्लाह अकबर। तो ये किसी के साथ जुल्म करके किसी का माल हथिया लेना, नाजायज किसी का माल हथिया लेना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इतना ब्रॉड है ये, क्योंकि ये आज के दौर के अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो नाजायज रास्ते इतने आम हो चुके हैं ना, कि उनका लगता है कि ये मिसाल के तौर पे रिश्वत लगता है कि ये तो तोहफा है, ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है, तो बच्चों के लिए ये तो चाय पानी का खर्चा है, बहुत मामूली उसको समझा जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो यही चीजें फिर कहा गया, ये जो राशि भी है और मुर्तशी भी है, जो रिश्वत लेने वाला भी है देने वाला भी है, दोनों ही जहन्नमी है, दोनों ही आग में जाएंगे। नापतोल में कमी बेशी करने वाले को फरमाया गई तो हम में से है ही नहीं, मिलावट करना हर चीज में, मिलावट हर चीज में, मिलावट देखें चर्ब जुबानी के जरिए किसी को इतनी इतनी चर्ब जुबानी दिखाएं कि वो जो है ना उसको पता ही ना चले कि उसके साथ हो क्या गया, उसको इतनी हेरा फेरियां ऐसे करें कि पता ही ना चले ये क्या है। और ये विरासत के अंदर जो आगे पीछे गड़बड़े करनी है, ये क्या है सारे, मतलब ये सारे झूठे मुकदमे करके किसी के ऊपर और फिर उनकी चीजें हथिया लेना, ये सब क्या है? ये सब बातिल तरीके हैं, सब बातिल, यानी नाजायज तौर पे किसी का माल खा लेना। अल्लाह अकबर। तो यहां पे बता दिया गया, ला ताकुलू, मत खाओ तुम ऐसे। और कयामत के दिन इंसान के कदम अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, हशर के मैदान से हिलेंगे नहीं, जब तक वो 5 सवालों का जवाब ना दे दे। हर बंदे को देना है, उनमें से एक सवाल ये हुआ कि माल कहाँ से कमाया तुमने, किधर से अर्निंग तुम्हारी कहाँ की थी। तो ये कैसे जवाब देंगे ये सब हम। आगे आता है, वला तकतलू अनफुसकुम, और ना तुम कत्ल करो अपनी जानों को। इस बात के 3 माने हैं। पहला माना क्या है? एक दूसरे को ना कत्ल करो, क्योंकि जो दूसरा है मुसलमान भाई वो भी आपकी अपनी जान है। जैसे सूरह है अल बकरा में यहूदियों को कहा गया कि तुम क्यों कत्ल करते हो अपनी जानों को, जबकि वहां पे बताया गया कि एक दूसरे को क्यों कत्ल करते हो, तो वहां अपने जैसे यहूदी को क्यों कत्ल करते हो। तो यहाँ पे भी अनफुसकम का मतलब क्या, दूसरे मुसलमान को कत्ल करना। आपको पता है कि अगर कोई आमदन कत्ल करेगा जानबूझ के, यानी वो खता से नहीं हुआ, गलती से नहीं हुआ, आमदन किसी को कत्ल करता है, तो हमेशा की जहन्नुम है उसके लिए, अल्लाह का गजब है, अल्लाह की लानत है। आगे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये छोटा मामला नहीं है। किसी को जहर दे दिया, किसी को ये कर दिया, किसी को रास्ते से हटाना है, किसी से जेलस हो गए, किसी को ये, तो उनके साथ ये काम करने, ये छोटी बात नहीं है। अच्छा, एक तो ये हो गया। नंबर टू कि ये जो ऊपर बातें कही गई हैं, अगर तुम ये इनको इसी तरह बातिल तरीके से माल खाते तो तुम समझ लो कि अब कत्ल कर रहे हो दूसरे को। तो ये नहीं करना, इस रास्ते पे नहीं चलना, इस रास्ते को छोड़ना है। ये भी एक माना है, बास तफसीरों में ये भी आया। तो ना तुम कत्ल करो अपनी जानों को इस तरह से, और माशरे को आप खराब करते हैं ना, माशरे के अंदर एक बेचैनी, बेसकूनी का माहौल, एक बेईमानी। आज देख ले हमारे मुल्कों के अंदर क्या हाल है, किसी को किसी का पता नहीं, ऐसे नफसा नफसी है, कोई किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करता, हर एक को लगता है ये मुझे लूट के ले जाएगा, कोई महफूज नहीं अपने आप को समझता। तो जो ऐसा माशरा होता है ना, वहां पे समझ ले कि माशरे का खून कर दिया ना, अपने आप को कत्ल ना करो इन कामों को करके। नंबर थ्री बात, बहुत अहम बात जो मैं आज है, जिसके ऊपर ज्यादा रोशनी डालना चाहती हूँ, वो है खुदकुशी ना करो। आज खुदकुशी यूथ के अंदर कॉमन होती जा रही है, जरा जरा से मसले के ऊपर लोग खुदकुशियां करने को तैयार खड़े होते हैं। पढ़ाई में नंबर नहीं आए खुदकुशी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं खुदकुशी कर रहे हैं, भाई जरा कोई मसला हो गया खुदकुशी, मोहब्बत में नाकामी हो गई खुदकुशी। कुत्ते यानी इंसान ने अपनी जान को इतना हल्का समझा है, हालांकि ये उसकी जान नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है उसके पास। और अल्लाह मौत दे, वो वक्त है मौत का, इंसान अपनी मौत को खुद लेकर आए अपने हाथ से, ये गुनाहे कबीरा है, गुनाहे कबीरा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी हथियार से खुदकुशी करेगा, पिस्टल से कर ले, गन से कर ले, वो दोजख में उस हथियार के साथ होगा, और वो उस हथियार से खुद को बार बार उसी तरह मारता रहेगा। जो जहर से खुदकुशी करेगा वो जहन्नुम में हमेशा जहर ही खाता रहेगा। जो शख्स पहाड़ से गिर के खुदकुशी करेगा वो जहन्नुम की आग में हमेशा इसी तरह गिरता रहेगा। मुस्लिम की ये रिवायत है, यानी वो उसके साथ वो ही होता रहेगा जिसने अपने आप को मसलन चाकू से मार मार के लहूलुहान करके फिर मार गया, वो उसी तरह अपने आप को करता रहेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी को लाया गया जिसने खुदकुशी की थी, तो आपने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी थी? ये नहीं मतलब कि पढ़ो ही ना उसकी नमाज ना, पढ़ेंगे तो सही, लेकिन कोई बड़े मुफ्ती या आलिम ना पढ़े, आम मुसलमान बस पढ़ के उसको दफना दे, नहीं इतनी ज्यादा उसके साथ नाराजगी की बात की गई है। तो इससे पता चलता है कि खुदकुशी एक हराम चीज है, और इसकी तरफ जाना किसी बात से मायूस होके भी, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाए, चाहे हालात कितने ही नामुवाफिक क्यों ना हो जाए, कितने ही गमों का पहाड़ क्यों ना टूट जाए, खुदकुशी जायज नहीं है। आप देखें ये लोग, अगर आप इनको समझते हैं ना कि ये बड़े सुकून में और मजे में, वो जो दुनिया की जन्नत कहा जाता है स्विट्जरलैंड, वहां पे खुदकुशी हलाल है, खुदकुशी लोग कर सकते हैं, हलाल से मतलब ये है कि वो लीगलाइज है वहां पे, लोग दरख्वास्त दे सकते हैं भाई मैं इस चीज से तंग आ गया हूँ तो मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ। तो देखें इन लोगों के अंदर अगर सुकून हो तो फिर ये काम क्यों करें। तो मोमिन जो होता है ना, वो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। मायूस इबलीस हुआ था, और वो आज देखा रांदा दरगाह हो गया, रजीम हो गया, धुतकारा हुआ हो गया, उस इबलीस, इबलीस का मतलब ही है मायूस, इब्लीस मायूस हुआ था। अल्लाह ताला कहता है जो मेरी रहमत से मायूस हो जाता है ना, उसने कुफर किया। क्या वो समझता है अल्लाह नहीं कुछ कर सकता, अल्लाह नहीं हालात बदल सकता? तो मायूसी को कहा गया ना मायूसी कुफर है, ये वाकई सही बात है, ये कुरान से साबित है। इंसान मायूस होता है तभी करता है ना खुदकुशी। तो ऐसे हालात के अंदर चले जाना, या ऐसी इंसान ऐसे डिप्रेशन में चला जाए कि अपने आप को खत्म कर ले, ये हराम मौत है। और सोच लें कि फिर उसके लिए जहन्नम है। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे वो तो, ये हाँ इधर तो तंग आके कहते ना, अब तो तंग आके ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे, समझ लो कि तो उसने हमेशा के लिए अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। वो यहां से तंग था, उससे बड़ी मुसीबत आगे थी और उसको नहीं पता था। तो इसलिए खुदकुशी हराम है। अच्छा एक और बात, जो फोर्थ बात मैं आपको कहना, ये तो मतलब इसका हो गया ना, एक बात जो मैं इसके इसके अंडर ही आप लिख लें कि जो आयत दी जाती है उलमा की तरफ से, ये अहम बात अब मैं आपसे करने लगी हूं, कि कहां पे लिखा हुआ है जी कि सिगरेट हराम है, कहां पे लिखा हुआ है जी कि ये शीशा हराम है, फलाना हराम है, ये हराम है, कहां लिखा हुआ है। तो उलमा इस आयत को कोट करते हैं, वला तकतुलू अनफुसकुम, अपनी जानों को कत्ल ना करो। कैसे ये उसके अंदर लाई करती है, देखिए मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ आज थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर, क्यों इसमें हरज क्या है। अब आजकल ये एक फैशन बन गया है स्मोक करना, पहले भी खैर फैशन तो था, आजकल शीशा, हुक्का, फलां, पता नहीं क्या क्या चीजें, वेपिंग, ये सब चीजें आ गई। आप लोग पूछते हैं हरज क्या है इसके अंदर, फिर क्या हो गया, यंगस्टर्स कहते हैं कि इसमें कबाहत ही क्या है और कैसे इस्लाम की रूह से ये हराम हो गया। सबसे पहले तो बात ये है, जितनी मेडिकल साइंस उठा के आप देख लें, सब डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, और इससे बढ़ के क्या बात चीज हो सकती है, इसका सबूत क्या हो सकता है कि इसके डब्बे पे लिखा होता है कि ये मुजिरे सेहत है। और इस्लाम में हर उस चीज की ममानियत है जो इंसान को नुकसान देने वाली है, और ये आयत बता रही है वला तक्तुलू अनफुसकुम, कियामत के दिन इंसान से नेमतों का सवाल किया जाएगा, और सेहत से बड़ी क्या नेमत हो सकती है जिसको इंसान खुद अपने हाथों से खत्म करे। फिर दूसरी बात, इसमें सिर्फ अपना नुकसान नहीं, मैंने अभी आपको क्या हदीस बताई, ना खुद नुकसान अपने आप को दो ना दूसरे को नुकसान दो, इसमें दूसरों को भी इंसान नुकसान देता है, अपने इर्द गिर्द वालों को नुकसान देता है। कैसे, वो सेकंड डिग्री स्मोकर बन जाते हैं जो एक्सपोज होते हैं, उसके बीवी बच्चे आदमी के, या एक कोई कोई बच्चा पीता है तो उसके जितने इर्द गिर्द वाले उसके घर में रहते हैं वो सब उससे एक्सपोज होते हैं, उन सबको इसका हार्म पहुंचता है, मैं आगे बताऊंगी। नंबर तीन बात ये कि इसकी बदबू अजियत है, कच्ची प्याज और लहसुन खा के कहा गया नमाजी मस्जिद में ना आए कि उससे फरिश्तों को अजियत होती है, तो इसकी जो बदबू है उससे नहीं फरिश्तों को अजियत होती होगी, इंसानों तक को अजियत होती है, जिस गाड़ी में बैठते हैं, जो उनके कपड़े होते हैं, जिस घर में रहते हैं, आप देखेंगे वहां पे सिगरेट की स्मेल होती है। नंबर फोर बात, वो पैसा जो सिगरेटों पे जलाया जाता है वो तबजीर है, तबजीर किस चीज को कहते हैं, वो पैसा जो नाजायज चीजों पर बेजा खर्च किया जाए वो तबजीर है, और तबजीर को कहा गया, तबजीर करने वाले कुरान में कहा गया वो शैतान के भाई हैं, यानी एक चीज पहले ही नाजायज है और उसके ऊपर पैसा बेदरे खर्च कर रहे हैं। ये हमने क्या पढ़ा था, ये पैसा अल्लाह की नेमत है, ये तुम्हारी जिंदगी को कायम करने का जरिया है, इसकी नाकदरी मत करो, ऐसे बेवकूफों को पैसे देके, पढ़ा है ना आपने, तो ये क्या नाकदरी नहीं है कि जब पैसों को समझ लें कि जलाया जाता है, जिस वक्त समझ लें आपने डॉलर बिल पकड़ के उसको आग लगा दी, जिस वक्त उससे सिगरेट खरीदी या कोई ऐसी चीज खरीदी, और जो मैंने पांच सवाल आपको कहे कि कयामत के दिन उसके बगैर कोई हशर के मैदान में से कोई इंसान हिल नहीं सकेगा, उनमें ये भी है कि माल कमाया कहां से था, वो खर्च कहां किया, ये माल कमाने का अलग सवाल है और खर्च करने का अलग सवाल है, ये नहीं कि आपने कमाया हुआ तो मैं चाहे सिगरेटों पे जलाऊं चाहे कुछ भी करूं, आपको क्या, नहीं अल्लाह तआला ने सवाल करना, क्योंकि ये भी अल्लाह की अमानत है, लिहाजा इसको खरीदना भी, इसको बेचना भी, इसको दूसरे को ऑफर करना भी, ये सब गुनाह के काम है, और अल्लाह ताला को जो काम सख्त नापसंद है ना, हदीस में आता है वो एक कीलो काल है, उसने कहा ये, उसने कहा, मतलब ऐसी बेकार बातें, कसरत सवाल है और माल को उड़ाना। अब मैं आपको बताती हूँ स्टेटिस्टिक्स, मैं ये सिर्फ अपनी तरफ से बातें नहीं कर रही, ये सारी मैंने रिसर्च की है आपके लिए, क्योंकि ये चीज आज तबाह कर रही है हमारी नस्लों को। इस सिर्फ अमेरिका में 4,80,000 यानी मोर देन 4 मिलियन, सॉरी 400,000, मोर देन 400,000 लोग हर साल इससे मरते हैं, और 41,000 उनमें वो हैं जो सेकंड हैंड एक्सपोज हुए हैं, बेचारे उनका तो कोई कसूर भी नहीं, उनमें बच्चे भी हो सकते हैं, उनमें और भी आदमी के घर वाले हो सकते हैं, अगर उसकी फैमिली ही होती जो उसके अराउंड होती। और ये उन्होंने कहा 10 से 13 साल तक की इंसान की जिंदगी को कम कर देता है, अगर इंसान इसको नई चीज को करता तो उससे 10 से 13 साल एक नॉर्मल इंसान की जो जिंदगी, तो उससे पहले ये इंसान मर जाता, क्योंकि जाहिर है इसको तो वो बहुत बीमारियां लग जाती। और अक्सर ऐसे लोग 65 की उम्र तक भी नहीं पहुंचते। पे वर्ल्ड वाइड जो जो WHO ने बताया, 8 मिलियन लोग, 8 मिलियन से ज्यादा, मोर देन 8 मिलियन था, यानी 80 लाख, 80,000 से ज्यादा लोग दुनिया में हर साल मरते हैं इससे। आप कोरोना पर होते हैं, ये देखें आप, ये स्टैटिस्टिक्स देखें, वो या मैं खुद नहीं लेकर आई हूं, ये आप सब लोग गूगल कर सकते हैं। और इनमें 1.2 मिलियन वो लोग हैं जो सेकंड हैंड इससे एक्सपोज हुए, सेकंड हैंड। आप देखेंगे बेचारों, उनका कोई कसूर भी नहीं, यानी इंसान खुद को तो नुकसान पहुंचाता है, उनको भी नुकसान पहुंचाता है, उनको उनके लिए भी मुसीबत खड़ी करता है। और आज ये जो जिसको कहते हैं हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स, HTPS, ये इतने कॉमन हो गए, जिनमें शीशा, जिनमें नहीं, उनके नाम और भी बहुत सारे नाम हैं इसके अंदर, जो हुक्का और वेपिंग और ये सारी चीजें इसके अंदर आती, क्या क्या उनके अंदर चीजें, ई सिगरेट्स, ये कोई समझता है ना कि ये सिगरेट नहीं है और जनाब ये सिगरेट से कम है। देखें जब टोबैको वही हराम हो गया, तो ये निकोटीन भी उसी का एक कॉम्पोनेंट है, निकोटीन इसके अंदर ये, और ये इनमें निकोटीन होती है जो इतनी एडिक्टिव चीज है और दिमाग की डेवलपमेंट रोक देती है, यूथ में दिमाग नहीं डेवलप होता, इससे लंग कैंसर होता है, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। तो नाम अलग अलग चाहे रख दे, काम वही है, वही सिगरेटों वाला ही काम है। शीशे के अंदर उन्होंने बताया 4,000 टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, 4,000, जिनमें निकोटीन भी है, जिसमें रेडियो एक्टिव और सब्सटेंसेस भी हैं, जिनमें हैवी मेटल भी है, तार है, इंसेक्टिसाइड्स हैं। तो इसके अलावा वो फ्लेवरिंग कर देते हैं, वो जो फ्लेवरिंग का नुकसान है ना, वो तो अभी सामने आया ही नहीं है, वो तो अभी आगे पता चलेगा, ये नई चीजें हैं ना, इनके पता चलेंगे जब लोग आगे आगे इनको करेंगे, क्योंकि रिसर्च इनके ऊपर अभी उतनी नहीं हो सकी जितनी हुई है। उससे उन्होंने बताया, नंबर 1, हाईली एडिक्टिव है, इंसान इसके ऊपर लग जाता है तो छोड़ नहीं सकता, लंग फंक्शन उसका कम हो जाता है, गले मुंह मेदे का, ये एसोफगस जो आपकी ये नाली होती है खाने की, इसका कैंसर हो जाता है, खून में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और एक बात से मैं इतनी डरी ना, कि मेल और फीमेल दोनों में फर्टिलिटी कम हो जाती है, बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है, इससे TB का चांस हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियां जल्दी पड़ जाती है, और हार्ट अटैक का तो मैंने आपको बताया, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। ये सब क्या है, यानी हम इंसान अपने आप को स्लो पॉइजनिंग कर रहा है। एक तो बेचारा बीमार होता है ना, तो वो बीमार हुआ, किसी को कैंसर हुआ या कुछ हुआ, तो एक अल्लाह की तरफ से कोई बीमारी है, एक है कि वो खुद अपने आप को कर रहा है, इससे बड़ी नाकदरी क्या हो सकती है अल्लाह की इस नेमत की जो अल्लाह ने दी हुई है, जिस्म की सूरत में, एक सेहत की सूरत में। और इसको आज हमने फैशन बना लिया कि बहुत कूल है, और उसके एड्स ऐसे दिखाए जाते हैं कि ये बड़े बड़े जबरदस्त चीज है, ये तो ऐसी चीज है कि बड़े टॉप के लोग करते हैं, जो देखो कैसी गाड़ियों में जा रहे हैं और जिसके साथ कैसी लड़की है वो करते हैं, लड़कियां भी इसमें पड़ गई, लड़के भी पड़ गए, ऐसी शॉप्स खुल गई, ऐसी ऐसी दुकानें हैं जहां पे ये चीज की जाती, और फिर कहते हैं ये कहां से, ये क्या जायज है, ये देख लें, वला तकतलू अनफुसकुम, मत कत्ल करो अपने आप को, इसमें अपने आप को भी कत्ल करते हैं और अपने घर वालों को भी कत्ल करते हैं, एक को नहीं सिर्फ नुकसान पहुंचता, ये है हमारे जो आज के इश्यूज हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर आना चाह रही थी, बजाय इसके कि मैं लॉन्ड्रियों के ऊपर ही आपको बताती हूँ कि उनके क्या हकूक हैं या क्या उनके पर, मेरे पास सारा वो भी पड़ा हुआ है कि लॉन्ड्रियों के क्या है, लेकिन मैं इसलिए नहीं वहां पे इतना टाइम लगाना चाहती कि ये हमारे आज करंट इश्यूज हैं जिनका लोगों को नहीं समझ आती, और फिर वो इसको सोचते हैं कि इस्लाम में तो ऐसा नहीं है, तो शराब हराम है, लेकिन ये चीजें तो कुछ नहीं है, जब ये कह दिया गया तो इसके अंडर जितनी भी चीजें आ गई वो सारी इसमें आ गई।
इन अल्लाह क्या नबिकुम रहीमा, समझो बात को लोगो, अल्लाह तुम पे रहम करने वाला है, वो तुम्हें नहीं चाहता कि तुम नुकसान में पड़ो, वो तुम्हें नहीं चाहता तुम अपना बेड़ा गर्क करो खुद। जिन माशरों में बातिल तरीके राइज हो जाएंगे और जिन माशरों में लोग इस तरह के कामों में खुद पड़ जाएंगे, वहां का क्या हाल होगा? यूथ है वो मुंह से धुएं निकाल रही है और लोग बातिल तरीके से नाजायज माल खा रहे हैं, जो सारे जो ऐसी किस्म की चीजों की खरीदो फरोख्त भी नाजायज है, और जो भी और तरीके जो बाजारों में चल रहे हैं जो हराम के हैं वो सब नाजायज हो गए। अल्लाह तुम पे रहम करना चाहता है। देखिए ये आज जो दुनिया में हमारे मसले मसाइल ना, वो ऐसे ही नहीं है, इनके पीछे कुछ चीजें हैं जो हमें बेचैन रखती हैं, जो हमें ये एंग्जाइटीज, ये डिप्रेशन, ये इनके पीछे ये चीजें हैं। कोई इंसान सुकून में ही नहीं, हर चीज घरों के अंदर, फिर भी सुकून नहीं, क्योंकि बातिल तरीके हैं हमारे, कमाइयों के तरीके बातिल हो गए। कहाँ कहाँ से हम कमा के लाते हैं, और कनात तो बिल्कुल नहीं है कि हम किसी चीज के ऊपर कनात करें कि बस इतना काफी है, हविस और की, और जब वो हविस इतनी बढ़ जाती तो फिर इंसान हराम में भी हाथ डालने लगता है। इन अल्लाह कान बिकुम रहीमा, इस बात को याद रखो। तो अल्लाह ताला ने जो तुम्हें अहकामात दिए ना, वो तुम्हारे अपने सुकून के लिए, वो तुम्हारे पर रहम करने वाला है, इसलिए तुम्हें बताया कि देखो ये रास्ते सही नहीं है। वमई अफअल ज़ालिका उदवाना व ज़ुल्मा, और जो भी ये सब ज़ाती करेगा, जुल्म करके साथ ये चीजें करेगा, यानी हद से बढ़ेगा, ये जो अल्लाह की हदें हैं इनको तोड़ेगा, उदवान यही है ना, हद से बढ़ना, और जुल्म करेगा, हक तलफी करेगा, कि जुल्म क्या है, किसी का हक ना देना, फसव नुस्ली ही नारा, तो वो आग में दाखिल कर दिया जाए, आखिर आग में हम उसको दाखिल कर देंगे। वो क्या ना ज़ालिका अल्लाह ही असीरा, और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है, ये ना समझना अल्लाह के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बड़ी नमाजी हूं, मैं तो उम्मती हूं, मैं तो नाते बड़ी खूबसूरत पढ़ती हूँ, मैं तो बड़ा हज मैंने किए। मैं किसी ने मुझसे क्वेश्चन ये किया कि उन्होंने ये मेहर की बात किसी को बताई, तो उन्होंने कहा लो अब अल्लाह ताला इतनी इतनी बातों पे हमें पकड़ेगा, लो अल्लाह कुछ नहीं करता, ये अब इसकी भी पूछ होगी भला। तुम ये सोचते हो अल्लाह ताला ने ये अहकाम ऐसे ही दिए गए, यानी ये ऐसे ही आयतें लिखी हुई है, सिर्फ वैसे ही लिखी हुई है पढ़ने के लिए, हाँ इसके अप्लाई ना करना, ये अल्लाह ने कौन सा पूछना है, हाँ उसने ऐसे ही अहकाम दे दिए और उसे पूछना भी नहीं है, नहीं जवाबदेही का भी इनकार। तो अल्लाह के लिए ये बड़ा आसान है, तुम किसी खुशफहमी में, यानी किसी खुशफहमी में ना रहना, किसी बात को ये ना सोचना कि ये इसको लाइट ले लो तुम, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या हो जाएगा, फिर क्या हुआ, ऐसे तो सारे ही करते हैं और धड़ल्ले से करते चले जा रहे हैं। नहीं ये फिर आग में, मैं कैसे आग में जा सकती हूँ, मैं कौन सा ऐसा कुछ किया है, नहीं ये अल्लाह के लिए पर बड़ा आसान है, अपने मुसलमान होने की खुशफहमी में, अपने इस्लाम, अपनी नमाजें, अपने हज, अपने इनकी खुशफहमी में ना रहना, मेरे अल्लाह को परवाह नहीं है, अरे उसके लिए आसान है। आपको लगता होगा कि हाय पता नहीं वो तो अल्लाह ताला कहाँ किसी को डालेगा इसके अंदर, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये बता रहा है कि ये गुनाह कितने शदीद है, मैं यफ अलिका, जो करेगा ये कौन सा काम करेगा, एक तो ये कहा गया कि ऊपर ये जो बातें आई है ना, जो ये करेगा, जो आयत नंबर 29 में आई, जो ये करेगा किसी ज्याती जुल्म के साथ, तो अल्लाह ताला उसको आग में डालेगा। दूसरा इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जो मुफस्सिर कुरान है, कि ज़ालिका ये से मुराद तमाम अहकामात शरीयत है, ये जो इन अहकामात को तोड़ेगा, जुल्म के साथ ज्याती करेगा, तो आग के अंदर जाएगा, चाहे वो अब पीछे विरासत के आ गए, चाहे वो ये निकाह वगैरह के आ गए, चाहे ये मुहर्रमात के आ गए बातें, जितनी भी ये बातें, इन तजतनी भूल, लेकिन अगर तुम इज्तनाब करोगे कबायर से, कबीरा गुना, कबीरा गुना कौन से हैं, अब कबीरा गुनाहों की जो फहरिस्त हमें बताई गई, उनके अंदर आप देख लें कि कैसे हमें पहचानने की कबीरा गुना कौन सा है। नंबर 1 ये कि उसके ऊपर कोई हद वाजिब होती हो, वो कबीरा गुना है, यानी हद कोई लगा, जैसे चोरी की ये हद है, जिना की ये हद है। नंबर 2 जिस पर किताबो सुन्नत में वईद सुनाई गई हो, यानी इस बंदे के ऊपर लानत है, या ये हम में से नहीं है, या इसके लिए जहन्नुम है, चाहे कुरान में आया हो चाहे हदीस में आया हो। नंबर 3 इसकी हुरमत बयान की गई कि हराम कर दिया अल्लाह ने, जैसे आता है ना कुरान में, अल्लाह ने ये हराम कर दिया,
तो वो भी कबीरा में आता है। इसी तरह उलमा कहते हैं वो सगीरा गुना भी कबीरा बन जाते हैं जिनके ऊपर इंसान हमेशगी तैयार करे, ढिटाई इख्तियार करे और उनको कहे कि कुछ नहीं होता इससे, वो भी कबीरा बन जाते हैं जिनको इंसान ढीठ होकर करता ही चला जाए। तो अगर तुम कबायर से इज्तनाब करोगे, मा तुन हाउन अनहु नुकफिर अनकुम सैयात, जिनसे तुम्हें रोके जाते हैं तुम्हें, जिनसे तुम्हें अल्लाह ने रोका है, अगर तुम उनसे रुक जाओगे जो बड़े बड़े गुनाह, तो हम दूर कर देंगे तुमसे तुम्हारी बुराइयां, वह नुदखिलकुम और दाखिल करेंगे हम तुमको मुदखलन करीमा, ऐसी जगह पे जो इज्जत वाली है, यानी जन्नत में हम तुम्हें दाखिल कर देंगे अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे। अब कबीरा गुनाहों के अंदर कत्ल भी आ जाता है, जीना भी आ जाती है, कौमे लूत वाला अमर भी, शराब पीना, चोरी करना, माल गसब करना, किसी का सूद खाना, यतीम का माल खाना, वालदैन की नाफरमानी एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, झूठ बांधना किसी के ऊपर, झूठी गवाही देना, रमजान में बगैर किसी वजह के रोजे ना रखना, झूठी कसम खाना, कतई रहमी करना यानी अपने रिश्तेदारों से तोड़ना, नाप तोल में खयानत करना, नमाज को वक्त से पहले पढ़ लेना यानी ऐसे ही नमाजें बेवक्त पढ़े, बिला उजर नमाज कजा कर देना, मुसलमानों को ना हक मारना, सहाबा कराम के ऊपर बुराइयां तान करना, रिश्वत लेना, फिर जकात ना देना, नेकी का हुक्म ना देना, फिर कुरान भूल जाना, हैवान को जलाना, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना, अल्लाह से बेखौफ होना, फिर मुर्दार खाना, जादू करना, हालत हैज में औरत के साथ यानी दूसरी तरह से जिनसी ताल्लुक कायम करना, ये सब कबीरा गुनाह है। अच्छा, इमाम ज़हबी की एक किताब है जो कबायर उसका नाम है, उसकी उर्दू भी ट्रांसलेशन हो चुकी है, अगर आपको कभी मिले तो आप वो ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ पे कहा गया जो कबीरा गुनाहों से बच गया अल्लाह ताला उसके सगीरा गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। तो सगीरा गुनाहों के अंदर ये है कि एक नमाज से दूसरी के दरमियान भी सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक जुमे से दूसरे, एक ने एक जुमा पढ़ा फिर दूसरा जुमा पढ़ा तो उसके दरमियान उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक उम्र एक और एक हज के दरमियान के भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक रमज़ान और दूसरे रमज़ान, मतलब ये नहीं कि रमजान आने से ही गुनाह माफ हो जाएंगे, एक रमजान में किसी ने रोजे रखे, रमजान को पूरा यानी यूटिलाइज किया और दूसरा रमजान भी ऐसे ही किया तो उनके दरमियान के गुनाह माफ हो जाएंगे। तो सगीरा गुनाह इस तरह अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, वुजू करने से भी सगीरा गुनाह झड़ते हैं, तो इस तरह अल्लाह ताला उनको माफ करता है। कबीरा जो होते हैं ना बगैर तौबा के माफ नहीं होते, या जिसका हक आपने देना उसको हक दिए बगैर नहीं माफ होते, तो इसलिए कबीरा गुनाहों से बचना बहुत जरूरी है कि इंसान इन कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचा के रखे। यहाँ तक रखते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما